वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओम तीस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओ
ओम शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा कहते हैं, मैं ही आकर के अपना भी परिचय देता हूं और अपनी रचना का भी भेद बताता हूं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको बाप का सही परिचय हो, और किसी को भी इस बेहद रचना की पूरी समझ हो। इसलिए कई प्रकार के प्रश्न पूछते रहते हैं, तो बाबा आकर के हम बच्चों को ज्ञान के द्वारा सब कुछ समझा देते हैं। अभी कोई भी बात समझने की बाकी नहीं है, है कुछ? अगर कुछ है भी तो बाबा कहते वेट एंड सी, वो ड्रामा में सुनाने का नहीं है, वो तो केवल देखने का है। सब सुना दो तो फिर मजा ही चला जाए, इसीलिए वेट एंड सी। परंतु अपना और अपनी रचना का पूरा भेद भगवान हमें सुनाते हैं, तो कोई प्रश्न रहता ही नहीं है। अगर कुछ है तो वो ड्रामा समझ करके फुल स्टॉप लगा दो। अगर कुछ है, कोई विघ्न है, कोई बात है, माया को समझ लो, बाकी बाबा को कोई दोष मत दो। इसीलिए बाबा हम बच्चों को हर बात स्पष्ट रूप से समझाते हैं। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 7/5/2026 है। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, है ना? सबका तीसरा नेत्र खुला हुआ, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र सबका खुला हुआ है, और ये दो नेत्र भी तो खुले हुए हैं ना, किसी का बंद तो नहीं है, तीनों ही नेत्र खुले होने चाहिए। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। सभी ईश्वरीय गोद में बैठे हैं, निश्चिंत होके बैठे हैं ना बट्टी वाले, निश्चिंत होके बैठे हो या घर याद आता है? जिनको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, घर बच्चे, हाथ उठाओ। कोई नहीं है? सब बाबा की गोद में, जैसे छोटा बच्चा निश्चिंत होकर माँ की गोद में बैठता है, वैसे हम भी यहाँ मधुबन में बाबा की गोद में बैठे हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। प्रश्न है, अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? सत्युग में देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म है, वहां पर और कोई धर्म नहीं, अद्वैत राज्य है, वहां पर और कोई राज्य नहीं, लेकिन उसकी स्थापना का आधार क्या है? तो अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? क्या है आधार? एक ही शब्द में है वो आधार, और वो आधार है योग बल। योग बल में पवित्रता बल भी आ जाता है। उस दिन भी बाबा ने कहा ना पवित्रता, आज बाबा कहते हैं योग बल। योग बल बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती है। वैसे क्रिश्चियंस के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ये लॉ नहीं कहता है। ड्रामा में ऐसा है ही नहीं कि ये क्रिश्चियन आपस में मिल जाए, रशिया अमेरिका क्रिश्चियन राज्य है, ये मिल जाए और तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ये लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना ये बाप का ही काम है और अभी बाप वो काम कर रहे हैं। कौन सा? विश्व में एक राज्य की स्थापना। और किसके द्वारा करा रहे हैं? हम बच्चों द्वारा। तो ये नशा चढ़ता है कि हम विश्व में एक राज्य एक धर्म की स्थापना कर रहे हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा। ये शरीर हमारे ऑर्गन्स हैं। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं, ओ दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म ग्लानी दुख हो पड़ा है ना? कितना दुख हो पड़ा है भारत में, धर्म ग्लानी हो गई है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ, क्योंकि इसी गीत में छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ और फिर से वो गीता का ज्ञान सुनाओ, फिर से एक धर्म एक राज्य की स्थापना करो। और फिर लास्ट में आता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवती भारत। मैं जब ऐसे धर्म ग्लानी होती है तब मैं आता हूँ। तो बाबा कहते हैं भारतवासी पुकारते हैं, हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म ग्लानी दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर के गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए ही कहते हैं शिव बाबा आइए, क्योंकि वो सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है, उस गीत में माया का परछाया पड़ा है। माया रूपी रावण का परछाया पड़ा है, इसलिए सब दुखी पतित हैं, पुकारते हैं। और क्या उस गीत में आता है? रूप बदल कर आओ। तो रूप बदल कर आओ माना जो निराकार रूप है उसको बदल कर साकार में आओ। तो रूप बदल कर आइए अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। तो मनुष्य रूप में आता हूँ, मेरा आना दिव्य और अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। ज्ञान का सागर तो परम पिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे, ज्ञान का सागर श्री कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राज योग सिखा रहा हूँ। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। भगवान अपने आने का समय भी बताते हैं, कब आता हूँ? जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने में आता हूँ, सारा अपना परिचय देते हैं भगवान। कलयुग से सतयुग बनाने में आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर के चित्र भी हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं। ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदल कर आया है। वो हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता है, किसी भी देहधारी गुरु को सुप्रीम गुरु नहीं कहेंगे। इस सुप्रीम गुरु एक ही परमात्मा है। ये तो बाप टीचर गुरु तीनों हैं, वो केवल गुरु बनते हैं, बाप और टीचर नहीं होंगे, ये तो तीनों हैं। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं, टीचर अलग होता है। कोई विरला होगा जो बाप टीचर भी होगा, ये कोई कह नहीं सके। हाँ, ये कोई कह नहीं सके मैं ही सबका परम बाप, परम टीचर, परम गुरु, सतगुरु हूँ। सब आत्माएं मुझे ही पुकारती है, गॉड फादर कहती है तो वो आत्मा का फादर हो गया ना, गॉड द फादर। तो गॉड जो फादर है वो किसका फादर हुआ? आत्माओं का हुआ ना। ये गीत भी भक्ति मार्ग का है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, भक्ति मार्ग का गीत है। सत्युग में तो माया होती ही नहीं जो पुकारना पड़े, वहां तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 वर्ष का चक्र है, आधा कल्प सत्युग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, ये भी एक बहुत बड़ा नशा है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है, दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात का जो ज्ञान है, बाबा कहते वो भी तुम बच्चों को है। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है। अभी तुम संगम पर हो, तुम जानते हो, क्या जानते हो? बहुत कुछ जानते हैं, परंतु बाबा कहते हैं तुम जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होना है। ये ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है। कलयुग में व सतयुग में बाबा कहते हैं ये ज्ञान किसको भी होता नहीं, इसीलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। वहां पर दिन और रात पर वहां पर गाया नहीं जाता, ज्ञान है ही नहीं। अभी जब ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं तब इसका अर्थ समझते हैं, दिन और रात का। तो इसीलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गंवाते हो। ये ज्ञान भी तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है। तुम अभी राज्य पा रहे हो और फिर आधा कल्प के बाद गंवाएंगे। ये ब्रह्मा का दिन और रात है, बाबा कहते तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। तुम देवताएं बन जाएंगे फिर ये ज्ञान रहेगा नहीं। अभी है रात्रि, इसलिए शिव रात्रि गाई जाती है। श्री कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, है ना? श्री कृष्ण को भी देखा ना, 12:05, तो आधी रात को जैसे उसका जन्म दिखाते हैं, तो श्री कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते हैं। चलो शिव बाबा की रात्रि तो समझ लेते हैं, लेकिन कृष्ण की रात्रि भी है, क्योंकि संगम के तुरंत बाद अब सतयुग पूरा आया ही नहीं है, तो श्री कृष्ण ही तो सतयुग लाएगा, तो इसीलिए दिन लाने वाला भी तो श्री कृष्ण ही होगा, इसीलिए उसके लिए भी रात्रि कहते हैं। श्री कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते हैं। शिव की जयंती अर्थात शिव का री इनकारनेशन होता है। ऐसे बाप का दिवस कितने दिन मनाना चाहिए? बाबा कहते कम से कम एक मास मनाना चाहिए शिवरात्रि। वैसे तो हमारे बाबा के बच्चे कई सेंटरों पर पूरा एक एक महीना शिव जयंती का कुछ न कुछ प्रोग्राम रखते ही रहते, एक हफ्ता तो कम से कम रखते ही है। तो बाबा कहते ऐसे बाप का दिवस कम से कम एक मास मनाना चाहिए, जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं उनका हॉलिडे भी नहीं मनाते। बाबा को बड़ा अफसोस होता है, मेरा हॉलिडे भी नहीं मनाते। बाप कहते हैं मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बन सबको ले जाता हूँ। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, किस बात का पुरुषार्थ करते हो? राजयोग सीखने का, राजयोग सीखने का पुरुषार्थ करते हो। बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, आत्मा का रूप क्या है ये भी किसको पता नहीं है। बाप कहते हैं तुम आत्मा क्या नहीं हो, जो भक्ति मार्ग में आत्मा के लिए कहते हैं या शिव बाबा के लिए भी कहते हैं, बाबा कहते न तुम वो हो न मैं वो हूँ, क्या नहीं हो तुम आत्मा, न अंगुष्ठे मिसल हो, कि वो अंगुष्ठे मिसल दिखाते हैं ना, शालिग्राम भी ऐसे ही अंगुष्ठे मिसल, शिवलिंग भी ऐसे ही अंगुष्ठे मिसल। तो तुम आत्मा न अंगुष्ठे मिसल हो और न अखंड ज्योति मिसल हो। शिव बाबा भी अखंड ज्योति मिसल नहीं है और अंगुष्ठे मिसल भी नहीं है, बिंदु है। तुम तो स्टार हो, बिंदु बिंदी मिसल, मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ। तुम आत्माएं शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो, मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, ये लोन लिया हुआ है, ब्रह्मा का शरीर लोन लिया हुआ है। बाप समझाते हैं तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा हैं। शिव बाबा को तो सदा ही ये रियलाइजेशन है मैं परम आत्मा हूँ, पर हम आत्माओं को ये रियलाइज नहीं होता कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है, दुख में हमेशा याद करते हैं, भगवान को दुख में हमेशा याद करते हैं। हे भगवान, हे रहम दिल बाबा, रहम करो। रहम मांगते हो, क्यों रहम मांगते हो, क्यों रहम मांगते हो भगवान से? क्योंकि वो बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्यूरिटीफुल है, सदा पावन है, प्यूरिटी पवित्रता में भी फुल है, ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को ये महिमा दे नहीं सकते, फुल एकदम भरपूर पूरा, ये महिमा केवल एक बाप की है। सारी दुनिया पर ब्लेस करना, ब्लेसिंग्स देना, ये बाप का ही काम है, वो है ही रचयिता, बाकी सब है रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं, कैसे रचना रचते हैं? तो भगवान भी तो ऐसे रचना रचते हैं, मनुष्य जैसे रचना रचते हैं। कैसे रचते हैं मनुष्य रचना? पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, स्त्री को रचते नहीं है, पत्नी को रचते नहीं है, उसको अडॉप्ट करते हैं। हाँ, वायदा करते हैं, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुख से एक धोखा हो जाते हैं। तो पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, परंतु विनाश नहीं करते। लौकिक माता पिता रचना रचते हैं, पहले पति स्त्री को अडॉप्ट करता है, अपना बनाता है, फिर उनसे रचना रचता है, परंतु वो विनाश नहीं करते। तो बाबा कहते हैं फिर उनकी पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। ये बेहद का बाप आकर क्या करते हैं? स्थापना भी करते हैं, कराते हैं, फिर पालना भी कराते हैं, फिर विनाश भी कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं, सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापित हो जाती है, और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर उनकी राजाई कब शुरू होती है, और धर्म वालों की जब उनके लाखों करोड़ों के अंदाज में वृद्धि हो जाती है तब राजाई होती है। और अभी बाबा कहते बाप जब आते हैं तो धर्म की भी स्थापना करते हैं और राजाई की भी स्थापना साथ साथ करते हैं। तो वास्तव में तीन चीजें साथ में स्थापन करते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म, हाँ देवी राजधानी, और फिर देवी कुल। तो ये कुल भी स्थापन बाप ही करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बाहु बल से कभी कोई विश्व पर राजाई नहीं कर सकता। बाबा ने समझाया है क्रिश्चियंस में इतनी ताकत है, वो आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए, विश्व पर राज्य पाए बाहुबल से, ये लॉ नहीं कहता है, ये कानूनी नहीं है कि बाहुबल से लड़ाई से कोई विश्व पर राज्य पाए। ड्रामा में ये कायदा ही नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने। कितनों ने कोशिश की ना, सिकंदर जैसा राजा उसने भी कोशिश की सारे विश्व का राज्य लो, हिटलर ने कितनी कोशिश की सारे विश्व पर राज्य करो, लेकिन कोई नहीं कर सका। तो जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने ये ड्रामा में कायदा ही नहीं है। तो बाप समझाते हैं विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है, केवल भगवान ही विश्व की राजाई देते हैं, और वो भी कैसे, योग बल से। वहां कोई पार्टीशन नहीं है, धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे, तुमको कोई टच नहीं कर सकता, कोई टच नहीं कर सकता, हाँ कोई हिला नहीं सकता, हाँ हिला तो क्या, हाथ भी नहीं लगा सकता और कोई राज्य। उनको कहा ही जाता है अद्वैत राज्य, जहाँ और कोई राज्य नहीं और कोई धर्म नहीं, यहाँ है अनेक राज्य। तो बाप समझाते हैं 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को ये राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी सीख रही है, हाँ देखो कैसा वंडर, कहाँ जो सीख रही है आत्मा उसका नाम डाल दिया सिखाने वाले पर। तो बाबा कहते श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी राजयोग सीख रही है। श्री कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था, वो इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं। ये बच्चों को समझाया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर भी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, हाँ बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो चक्र फिर से रिपीट होता है और बाप भी फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होने हैं जरूर, उसको भी कोई रोक नहीं सकता है, और एक देवी देवता धर्म की स्थापना भी होनी है जरूर, कोई रोक नहीं सकता। अनेक धर्म विनाश होनी है जरूर, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारत 100% सॉल्वेंट धर्म श्रेष्ठ था, देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे, धर्म भी श्रेष्ठ था, तो बाबा कहते कर्म भी श्रेष्ठ था। उनकी ही महिमा गाई हुई है, सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म, हाँ ये सारी महिमा आनी चाहिए, याद है ना सबको ये सारी महिमा। तो पहले पहले पवित्र थे, अभी पतित बने हैं, फिर बाप आकर स्त्री और पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं? भारत में तो बहुत मनाते हैं ना रक्षाबंधन का उत्सव, तो इतना भव्य से क्यों मनाते हैं ये कोई को पता नहीं है। भगवान स्वयं आकर के हम बच्चों को ये राखी बांधते हैं पवित्रता के, इसीलिए इतना भारत में रक्षाबंधन का महत्व है। बाबा कहते ये कोई को पता नहीं है, बाप ने ही आकर के प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है, ज्ञान भक्ति वैराग्य ये बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए है, प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए ज्ञान भक्ति और वैराग्य। तुमने देखा होगा, हाँ अभी बाबा हम बच्चों को भेंट कराते हैं, तुमने देखा होगा पादरी लोग जब चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती है, बस ऐसे नीचे झुकी हुई आंखें होती है। उस समय बहुत पादरी यहाँ घूमते थे क्योंकि ये कॉन्वेंट स्कूल्स थे, तो पादरी लोग चलाते थे, फादर्स और नंस। तो कॉन्वेंट स्कूल में नंस पढ़ाती थी और पादरी पढ़ाते थे। अभी भी सेंट मेरी स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल, सेंट ये सोफिया स्कूल, ये सब उस समय ये सब कॉन्वेंट के रूप में थे और पादरी और नंस पढ़ाती थी। उसके बाद धीरे धीरे खत्म हुआ, लेकिन बाबा के समय वो पादरी और नंस घूमते थे यहाँ माउंट आबू में, मुझे मैंने भी देखा है। परंतु वो कैसे एकदम शांत, एकदम एकांत में, कुल आपस में भी चलते लेकिन बोलते नहीं थे एक दो से, हाथ में माला होती थी और वो माला फेरते हुए आगे जाते थे। पादरी भी बाबा उनको देखते थे, ब्रह्मा बाबा को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। बाबा भी जाते थे पहाड़ों पर तो वो पादरी और नंस भी घूमती थी, तो बाबा उनको देखते थे। तो बाबा कहते हैं तो पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती है और किसी की तरफ देखते नहीं, नंस होती है ना, अब वो तो क्राइस्ट को याद करती है। कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था, क्राइस्ट गॉड का बच्चा था, तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है। अब हम भी उस समय वो जो नंस थी वो तो ड्रेस पहनती थी परंतु सफेद भी पहनती थी, फिर बाद में आप देखेंगे वो भी बिल्कुल ब्रह्मा कुमारियों की तरह सफेद ड्रेस और फुल स्लीव का ब्लाउज पहनती थी। तो कई लोग ब्रह्मा कुमारियों को भी समझते ये नंस है। तो परंतु बाबा कहते अभी क्या अंतर है, तो बाबा कहते हैं तुम तो हाँ क्राइस्ट गॉड का बच्चा था, कहते हैं तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है। बाबा जबरदस्ती ऐसे नहीं कहते तुमको सफेद ही पहनना है, अब घर में रहते हैं तो रंगीन तो पहनना ही पड़ता है, दफ्तर में जाते हैं तो रंगीन तो पहनना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ स्कूल में बैठे हैं तो एक यूनिफॉर्म के रूप में सफेद ड्रेस है। तो बाबा कहते हैं कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है, तुम तो आत्मा हो, नन बट वन। नंस का बाबा अर्थ बताते हैं नन, तो नन माना नन बट वन, एक के सिवाय और कोई नहीं, एक को ही याद करना है। सच्ची नंस तो तुम हो, तुमको वर्षा उस बाप से मिलना है, उनको याद करेंगे तब ही विकर्म विनाश होंगे। इसीलिए बाप का फरमान है माम एकम याद करो। आत्मा का निश्चय न होने कारण नंस फिर क्राइस्ट को याद करती है। अब क्या अंतर है नंस में और हमारे बीच में, वो क्राइस्ट को याद करती है, शिव बाबा को तो जानती नहीं है, वो क्राइस्ट को याद करती है। और हम बाबा कहते तुम भी नंस हो, नन बट वन, तुम शिव बाबा को याद करते हो। तो भारतवासी जो पहले पहले नंस फिर क्राइस्ट को याद करती है, गॉड कौन है ये तो जानते नहीं, भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वो ही नहीं जानते। सत्युग के भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वो ही नहीं जानते कि गॉड कौन है। लक्ष्मी नारायण को ये सृष्टि का ज्ञान थोड़ी है, न वो त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो, तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो, तुम्हारा ये अंतिम जन्म कैसा है? बाबा कहते हैं बहुत अमूल्य है, ये अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत की खास, दुनिया की आम, तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वो तो जिस्मानी सोशल वर्कर्स हैं, तुम हो रूहानी, तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो, हाँ बाबा सेवा के लिए हमेशा कहते हैं, हर एक आत्मा को बोलो बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन कहा जाता है। तुमको गिरने में कितने जन्म लगे गिरने में? बाबा कहते हैं 84 जन्म लगते हैं गिरने में। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में एक सेकंड लगता है। हाँ बस खाली घूमना है वापस ऊपर की ओर, नीचे गिरे अब वापस ऊपर की ओर, तो घूमने में और ऊपर जाना है तो एक सेकंड लगता है। ये तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक क्या होना है? पहले नारा लगाते थे मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद। तो मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसको अमर कथा कहा जाता है। अब इस अमर कथा की क्या विशेषता है? अमर कथा क्यों कहा जाता है? अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। करेगा कोई रिपीट? अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। ये अमर कथा किस लिए? अमर युग में जाने लिए। अमर युग कौन सा है? सतयुग। तो बाबा कहते हैं फिर से, तुम अमर आत्माओं को अमर बाबा अमर युग में ले चलने लिए अमर कथा सुनाते हैं। तो बाप कहते हैं अच्छा, और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद करो। ये सब और जो शब्दों का जो भी बनाते हैं वाक्य, वो सब भूल जाते हो, बस एक बात तो याद करो ना। और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे एक बाप को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो मनुष्य से देवता बनते हो, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ नई बात नहीं है। 5000 वर्ष बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं। रावण फिर श्राप देते हैं। कैसा खेल है? बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। यही तो खेल है, यही खेल है, वर्षा और श्राप। भारत की ही कहानी है, ये बातें बाप ही समझाते हैं। कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है, इसीलिए गॉड फादर कोई नॉलेजफुल पीसफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। तुमको तो तुमको भी आप समान बनाते हैं। तुम भी पूज्य थे फिर पुजारी बनते हो। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, ये भगवान के लिए नहीं है। हमको बाप समान बनाते हैं बाबा, लेकिन पूज्य और पुजारी तो हम बनते हैं, ऐसे नहीं कि सदा पूज्य हो जाएंगे बाप की तरह। तो आप ही पूज्य आप ही पुजारी, ये बाप के लिए नहीं है। तुम भारतवासियों की बात है, तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए, अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वो फिर क्या बनेंगे? हाँ, देवता तो बनेंगे, लेकिन वो क्या बनेंगे? जो थोड़ा पढ़ते हैं वो प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वो राजाई में आएंगे। सीधी बात है, जो अच्छा जो कम पढ़ते हैं वो प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वो राजाई में आ जाएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है, एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो कल्प पहले माफिक, पुरुषार्थ से तो पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। हर एक के पुरुषार्थ से पता चल जाता है कि कौन कौन माला में आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते हैं, भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, क्यों? ईश्वर के पास नहीं है क्या? ईश्वर के पास धन नहीं है जो हम ईश्वर अर्थ दान करते हैं? दान तो उनको दिया जाता है जिनके पास धन न हो, तो क्या ईश्वर के पास नहीं है क्या जो हम उनको दान करते हैं? या तो फिर कहते हैं श्री कृष्ण अर्पणम, अब श्री कृष्ण के पास भी क्या कमी है जो हम उनको दान करते हैं? परंतु वास्तव में होता है श्री कृष्ण अर्पणम नहीं होता, श्री कृष्ण को कोई भी दान नहीं करेंगे, वहां जरूरत ही नहीं है। परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम, भगवान को अर्पण जरूर करते हैं। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है, एक जन्म के लिए मिल जाता है। भक्ति मार्ग में पहले ईश्वर अर्पणम भी करते हैं तो भी बाबा कहते एक जन्म के लिए मिल जाता है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको 21 जन्म का वर्षा देने, है ना? बाबा ने कल भी बताया बलिहारी जाते हैं, तुम एक जन्म बलिहार जाते हो, मैं 21 जन्म बलिहार जाता हूँ। तुम एक जन्म मुझे अपना बच्चा बनाते हो तो मैं 21 जन्म तुमको भी वारिस बनाता हूँ, तुम एक जन्म मुझे वारिस बनाते हो। तो हम सब एक जन्म करते हैं और वो 21 जन्म हमारे हमको देते हैं। अब और भक्ति मार्ग में एक जन्म का एक जन्म में ही फल मिलता है। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको 21 जन्म का वर्षा देने, मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्मों के लिए उसकी प्राप्ति उनको हो जाती है, इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए मिलती है। डायरेक्ट अभी भगवान आए हैं, डायरेक्ट करते हो तो 21 जन्मों के लिए मिलती है। और भक्ति मार्ग में एक जन्म किया तो एक जन्म की प्राप्ति, तो इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। तो बाप समझाते हैं ये तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसीलिए इसको सफल कर लो। तुम ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहां से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे, इसमें बहुत इनकम होती है। योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ, तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोले, जहां बहुत आ सके। बोर्ड पर लिख दो जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं, तो बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं। सच्चा नेचर क्योर हॉस्पिटल है, सबकी नेचर सबके संस्कार बाबा कहते बदल देते हैं। नेचर बदल प्योर बना देते हैं। इस समय सभी इम्प्योर है, सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है जो तुम बच्चों को अभी पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे बच्चे, अच्छा अच्छा मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना, अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। दूसरा, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान, एक रस स्थिति द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। एक रस स्थिति द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो, एक तो इंद्रियों की आकर्षण से मुक्त, दूसरा संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो, तब अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्म इंद्री के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वो अति इंद्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था बनने से अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। अति इंद्रिय सुख की अनुभूति, सब आकर्षणों से मुक्त, एक रस अवस्था। स्लोगन, अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। मन के भावों को कैसे जान लेंगे? जब अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। यह व्यक्ति शारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो के अंतर्गत किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। कोई भी हलचल हो उसमें अचल रहना, बाबा कहते हैं यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? क्यों हम हलचल में नहीं आ सकते? क्यों? ड्रामा की हर सीन को तुम जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती है। तो कभी वायुमंडल से घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। निर्भय, अचल और अडोल। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार है और हम सब बाबा के पास जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे और उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा, 1 लाइन भाइयों की और 1 लाइन होगी भट्टी के भाई, वो बीच के भट्टी के भाई बीच के आएंगे, और 1 लाइन होगी भट्टी की बहनों की और 2 लाइनें होंगी अन्य बहनों की। तो आज सतगुरुवार के दिन हम सब बाबा के पास जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। भट्टी के भाई बहने हाथ खड़ा करो। भट्टी के भाई बहने बहुत अच्छा बाबा के घर में आए। बाबा के घर में आप सबको बहुत सुंदर मौका मिलता है यहाँ पर भट्टी करने का और बाबा के साथ का अनुभव करने का। तो आज भट्टी के भाई बहने कौन बाबा के पास जाएंगे बाबा को भोग स्वीकार कराने? है कोई? बस भाई तो कोई नहीं जाएगा। क्यों? हाथ खड़ा करो ना कि नहीं। आप नहीं जाएंगे तो बाबा ढूंढेंगे ये बच्चा कहाँ गया। इसलिए केवल भट्टी के नहीं, सभी भाई बहनों को बाबा के पास वतन में जाना है और बाबा को भोग स्वीकार कराना है। और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे और उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा, 1 लाइन होगी भाइयों की जो वो स्टैंड है उसके पास, 1 लाइन होगी भट्टी के भाइयों की और 1 लाइन होगी इस कैमरा के पास भट्टी के बहनों की और 2 लाइनें होंगी अन्य बहने और बहनों की। अच्छा, आज के दिन तो बहुतों के भोग हैं, खास करके कल 6 तारीख हमारी ईशुदारी का दिन था, तो आज हम ईशुदारी के निमित्त भी बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। जिन्होंने ईशुदारी को देखा वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, जिन्होंने नहीं देखा वो हाथ खड़ा करो, थोड़े ही हैं। अच्छा, फिर दूसरा, आप सबको मालूम हो हमारे आदरणीय भ्राता जगदीश चंद्र जी का भी 12 तारीख को उनका स्मृति दिवस है। उनको भी 25 साल हो रहे हैं अव्यक्त हुए और बाबा की अनेक सेवाओं में वो लगे हुए हैं। 12 तारीख को तो हम भोग लगाएंगे भी, शायद 12 या 14 को उनके निमित्त भोग रहेगा, लेकिन कईयों का शुभ संकल्प था। आज भी जगदीश भाई जी को हमारी तरफ से याद देना, तो आप सबकी तरफ से जगदीश भाई जी को भी हम याद देंगे और यहाँ का समाचार देंगे। जिन्होंने जगदीश भाई को देखा वो हाथ खड़ा करो, थोड़े ही हैं, क्योंकि जगदीश भाई जी ने, आप सबको मालूम है कितना बड़ा यज्ञ का स्टार्टिंग का जो लिटरेचर था वो जगदीश भाई ने ही आरंभ किया था और वो लिटरेचर धीरे धीरे बढ़ता गया। शुरू में एक बहुत सुंदर मैगजीन निकाली थी जिसका नाम त्रिमूर्ति था और बाबा भी कई बार मुरली के अंदर त्रिमूर्ति मैगजीन के बारे में मेंशन करते हैं। तो लिटरेचर की शुरुआत हमारे आदरणीय भ्राता जगदीश चंद्र जी ने किया। हर यज्ञ के रत्न की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ईशुदादी तो प्यारे बाबा के अंग संग रह करके ईशुदादी यज्ञ का अकाउंट संभालती थी, बिल्कुल सच्चाई सफाई और एक्यूरेसी। और दूसरी बात, शुरू में जब ये मुरली चलती थी तो उस समय ना तो कोई मोबाइल थे, ना कोई टेप था, ना कोई साधन थे। ईशुदादी अपने हाथ से बाबा की मुरली लिखती थी, लेकिन उनके लिखने का स्टाइल, उन्होंने कोई स्कूल में पढ़े नहीं थे, लिखने का स्टाइल क्या था, अपनी ही शॉर्ट हैंड बनाई थी। वह अपनी ही शॉर्ट हैंड से ही कई अक्षरों को बहुत छोटा सा लिख करके फिर वो सारी मुरली लिखती थी, फिर उसको टाइप होता था, लिख तो होती थी। तो ईशुदादी ने भी यज्ञ में रह करके इस सच्चाई सफाई और बाबा के प्यार का एक एग्जाम्पल थी। तो आज भी वो हमारे साथ हैं, जैसा सेवा उन्होंने की है वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणाएं हैं। इसके साथ साथ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के सुरेश भाई, जिन्होंने भी ट्रेनिंग में बहुत सेवाएं की हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले अपना भौतिक शरीर त्यागा, मधुबन में रहकर सेवा करते थे, उनके निमित्त भी होगा। अमर सिंह भाई के निमित्त भी आप सबको पहले बताया था, उनके निमित्त भी आज भोग होगा। इसके अलावा अन्य कई भाई बहने हैं जिन्होंने भोग के निमित्त कहा है, उनके निमित्त भी बाबा को याद प्यार दिया जाएगा। तो आज का दिन हम सब ब्राह्मण परिवार के लिए विशेष दिन है, और आज के दिन हम सबको मौका मिलता है बाबा के पास वतन में जाने का। अगर बाबा के पास वतन में सूक्ष्म रीति नहीं जाते हैं तो बाबा उन बच्चों को याद करते हैं कि ये मेरे बच्चे कहाँ गए, क्योंकि आप सबको मालूम हो साकार में जब बाबा टोली खिलाते थे या कुछ खिलाते थे, कोई भी बच्चा मिस होता था तो बाबा उनको बुलाते, इस बच्चे को बुला के आओ, इसने टोली नहीं खिलाई खाई है। तो आज भी अगर कोई नहीं जाएगा तो बाबा उसको कैसे भोग स्वीकार कराएंगे। इसलिए सबको जाना है बाबा के पास और ऐसा अनुभव करना है, बाबा से हम बात कर रहे हैं, और किसी को कोई भी संकल्प है तो बाबा के सामने रख के हल्के हो जाना है, और देखना बाबा कैसे हल्का करते हैं और बाबा कैसे वतन में आपको भरपूर करते हैं, आज ये भी अनुभव करना है। क्योंकि ये अनुभव हम मधुबन में जब आते हैं तो बाबा के सामने बैठते हैं तो करते हैं। तो आज जैसे अमृत पिलाएंगे तो भाइयों की तरफ वर्षा बहन अमृत पिलाएगी, और बट्टी के भाइयों को बड़ौदा की दो मुख्य टीचर बहनें हाथ खड़ा करें, हाँ दो मुख्य टीचर, बट्टी के भाइयों को बड़ौदा की बहन पिलाएगी और बट्टी के बहनों को सरिता बहन पिलाएगी, और बाकी दो बहनें एक बड़ौदा की और एक त्रिवेणी बहन अमृत पिलाएंगे। अभी हम सभी चलते हैं बाबा के पास और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।
Thank you.
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। या प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के पास, यादों के साथ, जैसे मैं बाबा के पास वतन में पहुंची तो वतन में जाते क्या देखती हूँ, बहुत से बच्चे वतन में पहले से ही पहुंचे हुए थे। बाबा भी एक एक को देखकर मुस्कुरा भी रहे थे। बाबा ने कहा, सब बच्चे मेरे लाडले और बाप के सिक्की लदे बच्चे हैं। बाबा हर सेकंड बच्चों को अपनी गोदी में बिठा करके अनेक प्रकार के अनुभव कराते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा जो है बच्चों को देखो क्या देने जा रहे हैं। मैंने कहा, बाबा बच्चों का तो कितना बड़ा भाग्य है कि बाबा स्वयं अपने हाथ से बच्चों को कुछ न कुछ दें। बाबा मुस्कुराने लगे, कहा, बाबा तो बच्चों को हर समय कुछ न कुछ देकर अनुभव कराते हैं। तो बाबा के हाथ में एक फूल था, बाबा ने सबको बहुत सुंदर फूल दिया और उस फूल के अंदर, बीच के अंदर एक बटन था और उस बटन को दबाना था। तो बाबा ने के हाथ में भी था, बाबा ने खुद उस बटन को दबाया तो उसके बटन को दबाते ही उस फूल से चारों ही तरफ वरदानों की जैसे वर्षा होने लगी, ऐसे होने लगा। तो बाबा ने कहा, सब बच्चों को भी ऐसे करो। तो बच्चे जब बटन दबाते थे, किसी का बटन दबता था, किसका बटन नहीं दबता था, किसका बटन वहीं का वहीं है, तो सब देखते और बाबा को कहते, बाबा हमारा बटन क्यों नहीं दब रहा है। तो बाबा ने कहा, ध्यान से देखो। ध्यान से देखते थे, उस बटन के अंदर लिखा हुआ था क्लियर कनेक्शन और मन की सच्चाई और सफाई। बाबा ने कहा, बाबा ने बच्चों को एक जिम्मेवारी दी है कि सबको वरदानों से भरपूर करो, लेकिन बच्चे कभी कभी कई बातों के अंदर सोचने के कारण, कई बातों में कंफ्यूज, कई बातों का स्पष्टीकरण न होने के कारण अपने आप को उनमें ही जाल में फंसाते जाते हैं। बाबा ने कहा है कि बच्चों को अभी अपने मन को बिल्कुल क्लियर बनाना है, क्योंकि जो समय के वाइब्रेशन है वो इतने पावरफुल है। एक तरफ तो क्लैरिटी को प्रत्यक्ष करेंगे और दूसरी तरफ वो मिक्सचर की डालेंगे। समय के वाइब्रेशन, प्रकृति के वाइब्रेशन, माया के वाइब्रेशन एक तरफ दूषित भी है और ब्राह्मण बच्चों के लिए क्लीन भी है। तो बच्चों को ध्यान रखना है, जैसे इंटरनेट कनेक्शन होता है या कोई भी बिजली का कनेक्शन होता है, क्लियर कनेक्शन होता है तो पावर आती है। इसी प्रकार से बच्चों को भी अभी समय अनुसार, क्योंकि समय, प्रकृति और माया अपने तीनों तरफ से अपना खेल दिखा करके चारों तरफ जाल बिछा रहे। कभी कभी बच्चे परिस्थितियों को देख के घबरा जाते हैं, कभी बच्चे सोच सोच करके अपने सामने परिस्थिति को बड़ा कर देते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी समय है बच्चों को अपने मन को हर बातों से डिटैच करके अपने मन को एकदम क्लीन और बाबा के साथ और बाबा के साथ और अपने साथ भी सच्चाई सफाई से चलना है, तो ऐसा फिर अनुभव करेंगे कि बाप के द्वारा भी हमें वरदान मिल रहे हैं और जैसे फूल से चारों तरफ खुशबू फैलती है तो वरदानों की वर्षा चारों तरफ करते रहेंगे। क्योंकि अभी समय ऐसा आ रहा है कि आप सारे विश्व के अंदर नहीं पहुंच सकेंगे, विश्व की हर आत्मा को बाप के साथ का अनुभव कराना है, उसके लिए सूक्ष्म पुरुषार्थ करना है कि अपने आप को एक तो बिल्कुल क्लियर स्थिति, समय को देखते हुए क्वेश्चन न करके समय को साक्षी होकर के देखें, और दूसरा बाबा से क्लियर कनेक्शन होगा तो हर समय प्रोटेक्शन, बाप की छत्र छाया और अनेक आत्माओं को वरदानों का भी अनुभव करा सकेंगे। फिर बाबा जिससे बहुत प्यार भी कर रहे थे, बाबा ने कहा हर बच्चा अपनी बुद्धि को एकदम बिंदी लगा करके फुल स्टॉप लगाए, तो जैसे बिंदी लगाई फुल स्टॉप लगाया वैसे ही वो फूल जो है एकदम चारों तरफ जैसे फुआरा चलता है ना फाउंटेन की तरफ, उस तरह से लाइट की किरणें और चारों तरफ वरदानों की वर्षा होने लगे। बाबा ने कहा समय दो स्थितियां दिखा रहा है, एक तरफ वरदानों की प्राप्ति और वरदानों की अनुभूति और वरदानों के द्वारा दूसरों की सेवा, और दूसरी तरफ समय जो है वो कई प्रकार की परिस्थितियों के द्वारा परीक्षा भी ले रहा है। तो इसलिए बच्चों को इन परीक्षाओं से घबराना नहीं है, परीक्षा जो है ये बच्चों की स्थिति को मजबूत कर रही है। उसके लिए बाबा ने कहा अभी समय अनुसार बच्चों को एक तो अपने आप को बिल्कुल ही क्लियर रखना है, दूसरा स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करना है। तो बाबा ने कहा कि लाइट हाउस क्यों बनना है कि सारे विश्व के अंदर आत्माओं को ऐसी जागृति लानी है तो उन्हें भी अनुभूति हो कि परमात्मा हमारा ही पिता है, यही है यही है। और दूसरी आत्माएं जो इतनी कमजोर होती जा रही हैं, उनको शक्ति की जरूरत है तो उन्हें वो ढूंढती हैं अपने किसी ना किसी ईश को। तो बाबा ने कहा आप पूर्वज आत्माएं हैं, उन आत्माओं को शक्ति देने के लिए माइट हाउस की स्थिति में रहे, उनको शक्ति दें और अनुभूति कराए। फिर तो बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे और बच्चों को जो फूल दिया था उस फूल का बटन दबाते ही सबके मस्तक पर लाइट का, सिर के पीछे लाइट की ताज और तखत, और लाइट से ही गहनों से श्रृंगार हो रहा था। बाबा ने कहा ये भविष्य होनहार महाराजाएं हैं और नई दुनिया के मालिक हैं, तो आज बाबा भी उन बच्चों को ऐसी स्थिति में अनुभव करा रहा है। फिर बाबा को मैंने बताया कि बाबा आज तो बच्चे किस किस को याद कर रहे हैं, तो बाबा ने पहले ईश्वरारी को इमर्ज किया और ईश्वरारी तो बाबा के हाथ पकड़ के चल रही थी। बाबा ने कहा बाबा के यज्ञ के विशेष रतन आधार मूर्त जिन्होंने यज्ञ को ऐसा संभाला और सदा ही यज्ञ की इकोनॉमिकल स्थिति को अच्छी तरह से, यज्ञ के जो साधन थे उसको बहुत ही सिस्टमेटिकली संभाला और अकाउंट में एक्यूरेट, और इस बच्ची ने तो बाबा का भी दिल जीता और पूरे ब्राह्मण परिवार का भी, साथ में अपनी शांत और हर्षित मुख चेहरे के द्वारा अनेकों को विशेष अनुभव कराए। फिर बाबा ने जगदीश भाई जी को भी मर्ज करते हुए, उनके हाथ में कलम थी और कॉपी थी तो बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख रहे थे। बाबा ने कहा देखो इस बच्चे ने अपनी लेखनी के द्वारा सत्य ज्ञान को विश्व के सामने प्रस्तुत किया है और इस ज्ञान के नियम मर्यादाएं क्या हैं उसकी भी जानकारी औरों को दी है। तो जगदीश भाई तो बाबा के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए, बाबा ये तो आपने किया है। बाबा ने कहा इतना सब करते हुए भी बच्चा सदा निर्माणचित और सदा अथक सेवाधारी रहा है। फिर और जिनके भोग थे उन सबको बाबा ने मर्ज किया और दृष्टि से उनको वरदान भी दे रहे थे। फिर बाबा को जैसे मैंने भोग स्वीकार कराया तो बाबा ने खास पहले ईश्वरारी को, जगदीश भाई को और जितने के भोग थे तो मैंने कहा बाबा पहले तो मैं आपको स्वीकार कराऊंगी। बाबा ने कहा नहीं, आज बाबा जो है बच्चों को भी अपने हाथ से भोग स्वीकार कराएंगे। फिर मैं बाबा को खिलाया और बाबा ने अपने हाथ से सबके सामने ऐसा किया जिनके निमित्त भोग थे उन सबके पास पहुंचे और बाबा ने खास भट्टी वालों को भी याद दिया, कहा कि अच्छा मौका मिलता है बाबा के घर बाप के साथ का अनुभव करने के लिए, फिर सबको याद दिया ओम शांति।